भाई बहनों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में। शुक्रवार का दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भली भांति होंगे। आपका जो गुजरा हुआ हफ्ता है वो सही सलामत रहा है और त्योहारों की तो भंडार अब मची है। हर एक हफ्ते कुछ न कोई नया त्योहार आता ही और इस साल के भीतर में बहुत सारे त्योहारों का हमने मजा लिया है। तो आज मैं सारा प्रोग्राम नाग पंचमी पर कर रही हूँ। ये है श्रावण शुक्ला पंचमी का त्योहार और इसके साथ साथ औरों की जुबानी द्वारा भी नाग पंचमी पर कुछ संदेश आज आप सभी को सुनने को मिलेगा। इसके अलावा सभी सारे जो गीत हमने चुना है ये सब हमारे नाग देवता पर आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं और नाग पंचमी त्योहार पर मैं अपनी ओर से कुछ संदेश अब आपको प्रकट कर रही हूँ। हमारे धर्म में नागों को देवताओं के तुल्य माना गया है। भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान रहते हैं तो शिव जी के तो आभूषण ही हैं नाग और सर्प का, और यही कारण है कि शिव जी के इस मास के द्वितीय पक्ष की पंचमी को सर्पों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था और फिर विधि विधान से की जाती थी नाग देवता की पूजा, और इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठे लगाकर और उस रस्सी को सांप मानकर लकड़ी को एक पट्टे पर रखा जाता है। हल्दी रोली चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध घी और चीनी मिलाकर इस रस्सी के सर्प देवता को अर्पित करते हैं। इस समय इस सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। पूजन करने के बाद सर्प देव की आरती उतारे, कच्चे दूध में शहद चीनी या गुड़ घोलकर इस घोल को सांप की मांबी या किसी बिल में आप डाल दे। बिल के पास से मिट्टी लेकर चक्की और चूल्हे पर दरवाजे के निकट दीवार पर तथा घर के कोनों में सांप बनाएं, पानी में भिगोए और उसे जो कच्चे चावल है पीसकर आप उस घोल से अथवा पानी में हल्दी घोलकर भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भीगे हुए जो बाजरे हैं, घी और गुड़, इनसे इनकी पूजा करें और इन पर दक्षिणा चढ़ाएं जाते हैं और घी के दीपक से आरती उतारी जाई जाती है। चतुर्थी और पंचमी को उपवास करने और ब्राह्मणों को खीर और लड्डुओं का भोजन करने का आज विशिष्ट महत्व भी है। मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था और उसके 2 लड़के और 1 कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल में बिंद कर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मां नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया और फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्रों का डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की कन्या को डसने उसके घर पहुंची, तब उस कन्या ने नागिन के आगे दूध का जो कटोरा था वो रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। और उस दिन नाग पंचमी थी, प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता और दोनों भाई जीवित हो जाएं और जो आज के दिन नागों की पूजा करे उसे कभी कोई नाग ना डसे। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई और उसी समय किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्र जो थे वो जीवित हो गए। नाग पंचमी के चार दिन बाद सांपों के सबसे बड़े शत्रु नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं और इनकी पूजा में गुड़ और घी का विशेष महत्व है। इस व्रत में उड़द और चने की दाल की पिट्ठी भरी कचौड़ियां खाई जाती हैं। एक किसान के घर सांप बहुत निकलते थे तो इससे उसने एक नेवला पाल लिया और एक दिन उसकी पत्नी अपने नवजात पुत्र को घर में छोड़कर पति को भोजन देने के लिए खेत पर गई। तभी एक सांप उसके पुत्र की ओर आया, तब नेवले ने उसे टुकड़े टुकड़े कर उस बच्चे को बचा लिया और जब किसान की पत्नी वापस लौटी तो खून से सना मुंह लिए नेवला द्वार पर बैठा था। मानो वह अपनी मालकिन को अपनी बहादुरी बताना चाहता हो। तो किसान की पत्नी ने सोचा कि इस दुष्ट ने अवश्य ही मेरे पुत्र को खा लिया है। ये सोचकर उसने तुरंत उस नेवले को मार डाला और जब वह अंदर पहुंची तो देखा कि उसका पुत्र तो खेल रहा है और समीप ही एक बांस में जो सांप है वो मरा पड़ा था। अब उसे अपनी गलती का आभास हुआ और वह हर समय नेवले की याद में दुखी रहने लगी। एक रात्रि को शोक से व्याकुल उस किसान की पत्नी से नेवले ने स्वप्न में कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के दिन यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करेंगी तो उनकी जो संतान की रक्षा है वो मैं करूंगा। और तभी से न्यूरी नवमी पर नेवले की पूजा हो रही है।
बजा तो आई जे अरे
और इस बार भाई बहनों हम स्वामी लक्ष्मण दास जी की आवाज आप सभी तक पहुंचा रहे हैं. वो अपना संदेश नाग पंचमी पर देने जाने वाले हैं.
नाग पंचमी हिंदुओं के उन त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्योहार है जिस पावन पर्व में प्रवेश करके प्राणी मात्र अपने सुखमय शांतिमय जीवन की परिकल्पना किया करते हैं. नाग पंचमी तिथि में भारतवर्ष का नियम है कि उस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है. वासुकी महाराज की पूजा हम सब करते हैं. क्यों? वासुकी को नाग को हम लोग ऐसा समझते हैं, सर्प को काल के स्वरूप में व्याख्यायित किया जाता है शास्त्र के द्वारा. काल तो प्राणी मात्र का आने वाला है, विनाश प्राणी मात्र का होगा, लेकिन हमें मृत्यु से छुटकारा नहीं पाना है. मृत्यु तो होगी, मौत तो आवेगी, परंतु मृत्यु हो तो कैसे हो, विचार इसी पर करना है. सम्राट परीक्षित को जब के द्वारा श्राप मिला कि आज के सातवें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, तो सम्राट परीक्षित मृत्यु से भयभीत होकर के कायरता का वर्णन नहीं किया, अपितु मृत्यु से मृत्यु तो हो लेकिन मेरी मृत्यु सुधर जाए, उस मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया बल्कि मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न किया. भाग्यशाली थे सम्राट परीक्षित कि सुखदेव जैसे तत्वज्ञ ऋषि महात्मा का पदार्पण हुआ और महात्मा ने कहा, राजन ठहरो, अभी 7 दिन अवशेष हैं, कोई बात तो नहीं, तक्षक आपको डसे, लेकिन उसके पहले आप भगवन निष्ठ हो जाइए. आपको मैं अमृत पिलाऊंगा. कौन सा अमृत? बोले कथा अमृत. कथा अमृत 7 दिन लगातार पिला करके सम्राट परीक्षित को मुक्त कर दिया. तो जो नाग पंचमी का पावन पर्व हम लोग मनाते हैं, इसमें नाग देवता की पूजा करते हैं. हमारे शास्त्रों में एक विधान है कि यदि हम अपने घर का निर्माण भी करते हैं तो उसमें वासुकी की पूजा जरूर की करते हैं. चांदी की ही वासुकी अर्थात नाग बना करके हम पृथ्वी में गाड़ देते हैं, पृथ्वी में उसको प्रस्थित कर देते हैं, पृथ्वी में प्रतिष्ठापित कर देते हैं. क्योंकि हमारे घर में कोई अमंगल न होने पावे, तो ये खास करके जो नाग पंचमी का त्योहार है इसमें दूध से पूजा की जाती है नागराज की, और दूध प्राप्त करके ना हमारे प्रसन्न होते हैं, और जब नाग देवता प्रसन्न होते हैं तो हमें अकाल मृत्यु का जो भय दर्शित कर रहा है उससे हम लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है. और उस दिन हम स्वच्छता के साथ विचार करते हैं कि आज हमारा जीवन प्रसन्न चित्त हुआ, आज हम संतुष्ट हो लिए. इसलिए इस वर्ष की जो नाग पंचमी आप प्रेमी जन पवित्रता के साथ मनाने जा रहे हैं, इसमें आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब नाग देवता की आराधना करके अपना कल्याण करें. सबका मंगल हो. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत। बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय।
भाइयों बहनों, गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है कि ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय हैं। गाँव में इसे नाग चैया भी कहते हैं और इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती है। ग्रामीण बच्चे तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते भी हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रूपियों की भेंट तथा आशीर्वाद। एक सुंदर कथा है कि प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के साथ पुत्र वधुए थी और सावन मास लगते ही छह बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी सातवी के कोई भाई ही ना था, कौन बुलावे आना आता था। और बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई रूप में याद किया। करुणा युक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी बद्र ब्राह्मण के रूप में आए और इसे लिवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप जो था वो धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नाग लोक ले गए और वहां वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया और उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस बधु को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया, परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी पूंछ कट गई। ये घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। अब अगला सावन आया तो वह बधु दीवाल पर नाम देवता को उरेप कर उनकी जो विधित्व पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधिन नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का अधिकार इस वधु को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध जो था वो समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधु के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया और नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी और उन्होंने ये भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। गंगा पंचमी जो भाई भिन्ना के नाम से भी जाता है, ये जो त्योहार ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। इस दिन सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को पिलाना चाहिए, फिर आकर दीवाल में किसी एक जगह गेरू से पोत लेवे और थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोरी घर जैसा बनाकर उसमें आप पांच सर्प बनावे और इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ावे और यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ावे। और इस व्रत जो व्रत है के करने से स्त्री जो सौभाग्यवती होती है, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और सभी मनोकामना मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। बहुत लोगों के यहाँ पूजन करके बहने भाइयों को टीका भी लगाती हैं और वह उन्हें मिठाई आदि देती है तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ जो बासी भोजन है उस दिन करती है और बदले में भाई यथाशक्ति द्रव्य बहनों को देते हैं। तो भाइयों बहनों, ये थी कुछ कहानियां और बातें नाग पंचमी पर, और अब मैं अपने विषयों को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आपके सामने एक या दो गीत और बजाने वाली हूँ, फिर उसके बाद में हमारी प्रोग्राम की समाप्ति हो जाएगी। मैं आपसे यहाँ पर नमस्ते कह रही और यही बता रही हूँ कि आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में जरूर शामिल हो जाइएगा। अपना सप्ताह अंत अच्छी तरह से व्यतीत कीजिएगा, बच्चों की निगरानी कीजिएगा, सही सलामत सभी के साथ में बिताइएगा ये जो आने वाला सप्ताह अंत है। और इन्हीं शब्दों से नमस्ते आप सभी को पहुंचे।
नादर मुड़ी में நாகபாம்பே நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே பாதாளத்தில் கூடி புகும் வைகுள் பாம்பே பாடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே பாதாளத்தில் கூடி புகும் வைகுள் பாம்பே பாடி பாடி நின்று விளையாடு குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமான கற்றை குழ பார்வதி கே கங்கணமாய் கரமாமல் எழுந்தாடுமே பாடுமாவே
நச்சுப்பையை பயத்திருக்கும்